प्रायेषु अभद्रेषु
नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु
नित्यं भागवत सेवया
नित्यं भागवत सेवया
भगवती उत्तम श्लोके
भक्तिर्भवति नैष्ठिकी
कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च
नन्दगोपकुमाराय
कृष्ण भावना परिपूर्ण है लेकिन फिर भी भक्तों के जीवन में इतना उथल पुथल क्यों होता है? हरे कृष्ण। जीव जो है वो भगवान का अंश है और भगवान परिपूर्ण है, इसलिए हम भी भगवान के अंश के रूप में परिपूर्ण है। तो देवाहूति भी कपिल देव भगवान को ये प्रश्न करती है कि जीव अगर परिपूर्ण है फिर भी उसको इतनी बुरी इच्छाएं और बुरी घटनाएं उसके जीवन में क्यों हुई? उसको जवाब देते हैं कि जीव परिपूर्ण है लेकिन उसने बहुत अपरिपूर्ण चीजों के साथ और लोगों के साथ में संग किया है, इसलिए उसके द्वारा गलत कर्म होते हैं जो उसको नहीं करना चाहिए, और जब गलत कर्म करते हैं तो उसको गलत फल प्राप्त होते हैं, इसलिए उसके जीवन में उतर पतन होते रहते हैं। हम सब लोगों का प्रॉब्लम यही है कि हम लोग बहुत दुनिया घूम के यहाँ पर आए हैं, बहुत अलग अलग हवाई जहाज में बैठकर, कभी कुत्ते के हवाई जहाज में, कभी बिल्ली के हवाई जहाज में, कभी मछली के, कभी पेड़ के, कभी कीकट के, मच्छर के, ऐसे अलग अलग शरीरों के यानों में बैठकर हमने बहुत प्रयास किया है। उन सारे प्रयासों का अंजाम यह है कि बहुत ढेर सारी भौतिक इच्छाएं जो स्वार्थी होती है, जो भगवान के लिए नहीं होती है, खुद के इंद्रिय भोग के लिए होती है, ऐसे बहुत इच्छाओं को लेकर बहुत सारा प्रयास हमने उनको पूरा करने का किया है, लेकिन दुर्भाग्य से उन इच्छाओं का स्वभाव ऐसा है कि जितनी इच्छा पूरी करते हैं उतनी नई इच्छाएं पैदा होती है, पहले से ज़्यादा पावरफुल और ज़्यादा वेग वाली इच्छाएं निर्माण होती है, फिर उसको बुझाने के लिए या संतुष्ट करने के लिए जीव प्रयास करता है, फिर उसके कर्म फल बंधन निर्माण होता है, फिर वो करते करते मृत्यु हो जाती है, तो वो स्टॉक लेके भी दूसरे याद में प्रवेश करते हैं और वहां पर अपना हिसाब किताब शुरू कर देते हैं। ऐसे अब जो खरबों बिलियंस ऑफ डिजायर लेके हम लोग यहाँ पर आए, वो स्टॉक लेकर आए, और ऐसा घूमते 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 एक दिन चक्र ऐसा आया कि मनुष्य यान मिल गया, तो मनुष्य यान में भी वो पुराना स्टॉक तो है ना अपने का, बहुत डिजायर बाकी है, अभी ये बाकी है, वो बाकी है, पूरा नहीं हुआ है, इंद्रियों का भोग, तो उसमें भी आके वही चालू कर देते हैं। अच्छा, मनुष्य जीवन में क्या प्रॉब्लम है पता है? कुत्ते ने अगर हिरण को मारा, सॉरी शेर ने अगर हिरण को मारा तो शेर को कर्म लगता नहीं है, मच्छर ने आपके बैठे शरीर पर बैठकर खून पिया तो उसको कर्म लगता नहीं है, लेकिन जैसे ही मनुष्य बनकर आपने कुछ कर्म किया तुरंत उसका अलग हिसाब कर होता है। हो सकता है इतने कर्म हम लेकर नहीं आए होंगे एनिमल लाइफ से, लेकिन यहाँ पर आने के बाद में जो डिजायर्स बचे हुए हैं उनको एक आगे चलते हैं, हर कदम पर एक नया कर्म बनता है, हर क्षण पर एक नया कर्म बनता है, हर कदम पर हर क्षण पर एक नया कर्म का संकल्प निर्माण होता है। अभी आप यहाँ बैठे हैं सोचते होंगे कि मैं नवंबर में अमरीका जाऊँगा, हो सकता है अभी आप बैठ के सोचते हैं, तो उसका वीजा निकालना, टिकट का पैसा इकट्ठा करना है, रहने का इंसाफ करना है, वहां पर अंदर का प्लानिंग करना है, तो संकल्प ऐसे इच्छाओं के हर क्षण चलते रहते हैं। मन जो है वह अनंत प्रकार के संकल्पों पर चिंतन करते रहता है, साथ में ये भी बोलते होंगे कि अभी मेरी वाइफ का अगले महीने बर्थडे है, तो साड़ी भी लेना है, तो नया मोबाइल लेके देना है, मेरे बच्चे का एडमिशन होने वाला है तो उसके लिए भी का इंतजार करना है, ऐसे सारे संकल्प एक साथ मन में प्रकार में चलते रहते हैं। हर एक संकल्प का एक कर्म फल है, हर एक संकल्प का एक कर्म होगा, अनेक कर्म होंगे, हर एक कर्म का एक फल होगा, और उसमें हम लोग ऐसे 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 फंसते ही जाएंगे। तो दुर्भाग्य से इसमें से 100 में से जितने संकल्प हम करते हैं डिवोटी बनने के बाद भी, हो सकता है 90 ऐसे ही करते होंगे और 10 भगवान की दिशा में करते होंगे। हमको सबको सोचना पड़ेगा इसके बारे में, हम लोग डिवोटी तो बन चुके हैं, मतलब तथा कथित, क्या कहते हैं उसको इंग्लिश में, सो कॉल्ड बन चुके हैं, मतलब अच्छी तरह से बन चुके, तिलक लगाते हैं, संकेत करते हैं, जप करते हैं, चार नियम पालन करते हैं, लेकिन मन के अंदर जो संकल्प हो रहे हैं वो हर समय भगवान के लिए ही होते हैं, इसका गारंटी अभी भी नहीं है। इस सत्य को सब लोगों को स्वीकार करना चाहिए, तो फिर जैसे संकल्प होते हैं वैसे इसका परिणाम होता है। चाहे पाप खाते में आपका संकल्प नहीं होगा लेकिन भगवान के लिए नहीं होगा तो उसका परिणाम अपने दिशा में होगा। सत्वगुणी इच्छा भी करते होंगे लेकिन भगवान को छोड़ के करते होंगे, सत्वगुणी फल मिलेगा उसका। रजोगुणी भी इच्छा करेंगे तो रजोगुणी फल मिलेगा, तमोगुणी करेंगे तो उसका पाप लगेगा। जो सत्वगुणी इच्छा में भगवान को जोड़कर काम करेंगे तो फिर उसका कुछ अच्छा लाभ निकलेगा, यानी उसके कर्म बंधन नहीं होंगे। तो ये उथल पुथल जो होती है ना हमारी जिंदगी में, तो दो कारण से होती है, एक कारण है कि हमने ऐसे कुछ कर्म किए हैं उसका फल मिल रहा है, वो निश्चित है। लेकिन जब हम लोगों ने कुछ कर्म किए हैं और हम लोग यहां पर आए हैं और उसका फल भोग रहे हैं और बीच में समझो भगवान के भक्त बन गए, तो दूसरा कारण होता है उसका उथल पुथल होने का। सुनना है आपको, ऐसा ना हो कि मैं वो कहूँ और सब लोग भाग जाएगा। भूकंप में एक बार मैं उधर भूज में एक क्लास दे रहा था, भूकंप की सेवा में गया था, तो उधर में बैठ के क्लास दे रहा था, तो क्लास के बीच में भूकंप आया, आफ्टर शॉक होते ना, तो मैं जहां बैठा था ना वहां से मैं 3 फुट आगे चला गया। जिस भूमि पर बैठा था भूमि ऐसे 3 फुट आगे चली गई, तो सारे अटेंडेंट जितने भी थे क्लास वाले सब भाग गए और मैं वही बैठा रहा। मुझे लगा भूकंप हो रहा है तो उठ के भागूंगा तो उधर भी मर सकता हूँ और मरना है तो इधर भी मर सकता हूँ, तो उधर बैठ के भजन करना अच्छा है। तो मैं जब करके रहा कुछ लोग कुछ देर के बाद वो शौक रुक गया, तो वापस आके बैठे ऐसा वापस शुरू कर दिया। तो ऐसे अभी मैं अभी कुछ बताऊंगा आपको, हो सकता है भूकंप हो जाए और भाग जाए ऐसे। जैसे हम भक्त बनते ना, तो एक बहुत अच्छी घटना होती है, भगवान आपके जन्म जन्मांतर की जो फाइलें हैं वो अपने पास ले। सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट अपने लाइफ का वही है जिस दिन हम तय करते हैं कि हम भगवान आपके हैं। कितने लोगों ने भगवान के सामने ऐसा बोला है कि भगवान हम आपके हैं? नहीं बोला तो आप भी बोल दो भगवान बोलो,
भगवान
हे कृष्णा,
हे कृष्णा
तवास्मिति,
तवास्मिति
आई एम योर्स,
मैं आपका हूँ।
जैसे ही हृदय से हम लोग ऐसा बोल लेते हैं, मुंह से नहीं हृदय से बोल लेते, तो हमारे जितने हमारे फाइल्स हैं इस जन्म के हैं अलग अलग होते हैं, क्योंकि डेमिगॉड्स तो वो सब काम नहीं करते, उनको तो कैसा है जो समय जो बताया है वैसे करना है, उसमें कुछ मैनिपुलेशन नहीं कर सकते, वो तो केवल भगवान कर सकते। सारी फाइल अपने पास ले लेते हैं और फिर देखते हैं उसके अंदर कि कितना रखना जरूरी है उसके अंदर और कितना डिलीट करना जरूरी है। जितना भी डिलीट करना हो सकता है उतना डिलीट मार देते हैं। क्या भी ये भक्त बना है तो उसका भी मेरे पास पहुंचने के लिए कितना शुद्धिकरण जरूरी है उतने कर्म रखते हैं, ताकि इनका फल जो है अभी कर्म फल के बजाय वो शुद्धिकरण का प्रक्रिया के रूप में उसका अनुभव उसको देंगे। कर्म तो फल आपका ही है, उसके अंदर आपको फटके पड़ने समझो, तो वो मैं ऐसे इस्तेमाल करूंगा कि वो फटके पड़ने से वो उसका हृदय शुद्धि होगी, आत्म साक्षात्कार होगा और मेरे पास और नजदीक आएगा, मेरे और नजदीक आ जाएगा। नहीं तो फिर कर्म फल खाएगा और माया में फंस जाएगा, रोएगा दुख करेगा और कुछ प्रयास करेगा तो और फंसते जाएगा। लेकिन वही कर्मफल मैं ऐसे उसको चेंज कर दूंगा कि वो कर्मफल होते ही और मेरे पास आए, उसको कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन, परिवर्तन। और फिर सारे जितने फाइल्स हैं, समझो अभी आपको लगता है कि 100 फाइल जीवन तक आपको पिछले वाले कर्मों को फल देने को लगेंगे, ऐसा हो सकता है ना, भाई ऐसा है भी, ऐसे इतने कर्म का स्टॉक लेके आए हैं कि कुछ कर्म का फल का अनुभव कुत्ते की जिंदगी में आपको मिल सकता है, तो कई एक लाइन में आपको बीच में कुत्ता बनना पड़ेगा और वो कर्म का जो फल है वो कुत्ते की लाइन में ढूंढना पड़ेगा। कुत्ते के जीवन में कोई कर्म नया पैदा नहीं होता है, लेकिन आप देखते ना कुछ कुत्ते गटर में दो पीछे के पैर पैरलाइज होके और घसीटते रहते हैं गटर में, और कुछ कुत्ते एसी में ऑडी कार में और बंगले में धनवान के घर में रहते हैं, उसमें कोई अंतर है ना, वो जीवन में कुछ नए कर्म नहीं बनते। लेकिन वो एक कुत्ता धनवान के घर पे गया तो उसका कुछ पुराना स्टॉक था उधर गया, एक कुत्ता गटर में दो पीछे पैर पैरलाइज होके घसीट रहे थे, तो ऐसे कुछ कर्म ऐसे होंगे जो आगे वाले कुत्ते की जिंदगी में मिल सकते हैं, आगे वाले शेर की जिंदगी में मिलेंगे, आगे वाले मनुष्य के जीवन में मिल सकते हैं, कुछ आगे वाले देवता के जीवन में मिलेंगे, ऐसे बहुत वैरायटी ऑफ स्टॉक होता है उसके अंदर। भगवान क्या करते हैं सारे चीजों को इकट्ठा करते हैं और वही हमारा तबादला कर सकते हैं कि इसको आगे का जीवन देना है नहीं देना है क्या करना है वो तय कर सकते हैं, हमारी इच्छा के ऊपर, हमारे शरणागति के ऊपर, हमारे ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम सतैव भजाम्यहम्, हम कितने हम शरण है, कितना हमारा संकल्प दृढ़ है, कितना दिल से आपने तवा स्मृति मैं आपका हूं ऐसे बोला है, कितना दिल से बोला है, तो सबके ऊपर वो तय करते क्या करना है। इसमें बहुत अच्छी एक बात होती है जो हमको बड़ी गड़बड़ लग सकती है, वो ये है कि जितने आगे के जन्मों की जरूरत वाले कर्म है जो आगे आने वाले थे डिवाइडेड रूप में विभाजित स्वरूप में धीरे धीरे आने वाले थे और सबको इकट्ठा करते थे, तो एक नया फाइल बना दे कॉन्सेंट्रेटेड फाइल, और उस सारे कर्म के जितने फल है ना, कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति बाजम, इतना होना था लेकिन वो इतना करके एक जोड़ दिया, वो इतना होना था उसको इतना करके जोड़ दिया, ऐसा करते करके जब जोड़ देना तो वो ये जीवन के हिसाब से बहुत बड़ा लगता है, बाप रे एक ही जीवन में सब हिसाब किताब पूरा करना है, लेकिन एक्चुअली वो मर्सी हमारे ऊपर एक्चुअली मर्सी है, क्योंकि 10 जन्मों में समझा आपको पूरा करना था, वो एक ही जन्म में भगवान लाके रख रहे, वो टोकन जो रूप रख रहे, बहुत सारा डिलीट कर ही दिया है, अगर वो सारा का सारा ऐसे कैसे आता ना तो पता नहीं हम लोग जब कर पाते या नहीं इतना उत्साह से तरह लगा पाते, और वो स्ट्रेट है कि गड़ा है वो देख पाते कि नहीं पता नहीं हमें, मतलब आदमी का तिलक प्रेम से कब लगाते हो, उसका मन शांत है, अभी नींद भी पूरा हो गया है, भूख ज्यादा लग रही है उसको, मम्मी ने गाली नहीं दी है उसको, पत्नी ने गाली नहीं दिया है, या उसने पत्नी को गाली नहीं दिया है, तब उसका अच्छा दिल है, कभी तुम अच्छी तरह से वो तिलक लगा स्ट्रेट करेगा साइड से फर्स्ट क्लास, लेकिन समझो तुम बहुत फ्रस्ट्रेट रहेंगे आप तो क्या होगा, तिलक का लगाएंगे लेकिन तिलक ऐसा होगा क्या मालूम। तो ऐसे ये हमारे जीवन का हिसाब किताब, तो इसलिए कभी कभी भक्तों की जिंदगी में आम लोगों की जिंदगी से बहुत ज्यादा दुख दिखाई पड़ते, कभी कभी बहुत ज्यादा संकट दिखाई पड़ते हैं, क्यों ऐसा ऐसा तक लगता है कि ऐसा क्यों हमारी जिंदगी में ऐसा क्यों होना चाहिए, देखो वो दाऊद को देखो कितना पाप कर रहा है फिर भी आराम से इतने धन में हजारों करोड़ों रुपए के अंदर रहता है, वो इतना प्रॉपर्टी इतना डिग्निटी उसको वो दुनिया से मिलती है, इतना ऐश्वर्य मिल रहा है, तो हम तो बाप का नाम जप रहे हैं, हम तो भी कुछ करते भी नहीं है, चाय भी नहीं पीते, तो हमारे जीवन में तो संकट क्यों आ रहा है, इतना भयंकर संकट आप हमको ही क्यों आ रहा है। इसमें उन्होंने और एक बात करते हैं, आपके शायद कर्मों में कुछ नहीं होगा लेकिन आपको उनके पास लेके जाने के लिए कुछ नया भी डाल देते, उससे इससे मैंने कहा डरना पता समझ में आपको आया, जो आपके कर्म में है ही नहीं वो, लेकिन वो आपके जीवन में डाल देते हैं, कभी कभी औरों से भी लोग बोलते हैं कि ये तो आपके जिंदगी में है नहीं, ये कैसे आ गया आपकी जिंदगी में, तो उसको समझता नहीं, हमको समझता है कि भगवान ने ही हमारे लिए इतना किया, क्योंकि भगवान भक्तों के लिए ना जो प्रामाणिक भक्त होता है ना, जो आज 5% प्रामाणिक है, कल 10% प्रामाणिक हो गया, बाद में 50% हो गया, बाद में 90% हो गया, तो प्रामाणिकता भी बढ़ती है ना, सिंसियरिटी ऑल्सो ग्रोज ऑन इंक्रीजिंग, तो वो वैसे ना फिर उसके लिए उसके प्रामाणिकता के अनुसार कुछ डाल देते हैं उसके अंदर, बहुत कठोर लगता है, बहुत भयंकर लगता है, लेकिन वो उसके अच्छे के लिए होता है, स्पेशल योजना है उसकी, वो जिसको 10 में नहीं 1 में लेके जाना है मुझे, जैसे डॉक्टर आपको बुखार है, बच्चे को बुखार है, तो आपने जीपी कवर दे दिया, उसको कुछ गोली दिया, कुछ फल सिरप दिया, ठीक है नहीं ठीक हो रहा है वो, तो हम मम्मी क्या बोलते हैं उसको इंजेक्शन देना पड़ेगा, तो हॉस्पिटल लेके जाएगी उसको, चार लोग उसको पकड़ेंगे, और मम्मी बोल रहे डॉक्टर को दे दो आप, बेचे लग रहे क्या क्रूर मम्मी है ये, वो तो उदय को लड्डू खिलाया था उसने, उदय जिले भी बनाया था घर में, और वही मम्मी बोल रही है इसको लगाओ इंजेक्शन, क्या असल में तो क्रूर लगती है, जिले भी तो नाटक था थोड़ा, ये तो रियल उसका रूप यही है, तो वो सब होने के बाद में जब वो ठीक हो जाएगा तभी भी गाड़ी देगा, लेकिन जब बड़ा हो जाएगा समझ आएगा कि वो ना मम्मी की स्पेशल योजना थी मेरे लिए, अगर वो उस समय इंजेक्शन नहीं देती ना पता नहीं आज मुझे क्या होता। तो जब ज्ञान प्राप्त होगा, मतलब बड़ा होने का मतलब कि जब ज्ञान होगा उसको, तब वो मम्मी को धन्यवाद देगा। जैसे आप अगर भक्तों के संग में रहेंगे और आपके जीवन में ऐसा कुछ इररिलेवेंट है, इसको कोई मतलब ही नहीं है, रहेगा ही क्यों हुआ है मेरी जिंदगी में, ऐसा होगा और आपको भी ज्ञान होगा, आपको संग भक्त भी संग आपको अच्छा देते होंगे तो आपको लगेगा कि मेरे लिए ना भगवान की विशेष योजना है, स्पेशल अरेंजमेंट। तकलीफ तो बहुत हो रही है लेकिन मेरे लिए विशेष योजना है। इसलिए कि भक्तों की जिंदगी में उथल पुथल तो होगी ही, उथल पुथल तो होगी ही, दिल को थाम के बोलो कि हम तैयार हैं उसके लिए, बोलो तैयार
हैं, तैयार हैं,
क्योंकि जब तक आपके तरफ से पूरा ग्रीन सिग्नल नहीं आएगा ना तो भगवान भी उसमें हिचकिचाते हैं। आप बोलेंगे भगवान जब अच्छे मुड़े तो अच्छा सो के खाना पीना खाते, कल रात को फिश भी अच्छा खाया था, आज रखने तो इडली डोसा खाया है, अच्छा मूड एकदम अच्छा, सुबह सन भी प्राप्त हो गया, उसके बाद में भगवान बोल भगवान डू द नीडफुल, आपके पास पहुंचाने के लिए जो आवश्यक है बिना हिचकिचाहट कीजिए भोगरी, मेरे लिए मत देखना मैं क्या सोच रहा हूँ, रो रहा हूँ कि चिल्ला रहा हूँ, आप इलाज करना वही करना जिससे मैं आपके पास आ जाऊं, आपका हो जाऊं, आपके गोद में बैठ जाऊं, बिल्कुल संकोच मत करना, मैं आपको फुल ग्रीन सिग्नल दे रहा हूं कि आप कीजिए। अच्छा मुड़ गए थे, फर्स्ट क्लास दिल से बोल दिया, आंखों में आंसू भी आए होंगे शायद, और 5 साल के होंगे बाद में फिर भूल गए होंगे, वो अच्छा मुहूर्त को भूल गए, मुहूर्त में बोला था, फिर भगवान उसके अनुसार कुछ करते हैं तो भगवान क्यों कर रहे आप, आई बी ओनली अपने जो एक बार कहा था ना वो भगवान नहीं भूलते, आप भूल सकते आप भूल जाएंगे उसको, भगवान नहीं भूलते। एक बार जिसने प्रभु रामचंद्र ने कहा था, एक बार जो कहेगा ना मैं आपका हूं, मैं कभी भी उसको भूलता नहीं, हमेशा उसकी रक्षा करता हूं, हमेशा उसके हित में काम करता हूं, मुझे उसका कल्याण में योजना बनाता है। इसलिए भक्तों को ना हिम्मत नहीं हारना चाहिए कभी, किस चीज पर हम लोग हिम्मत बनाए रख सकते हैं, अगर आपको ये यकीन होगा ना कि मेरे जीवन में जो भी हो रहा है डायरेक्टली उनके ही निर्देशन में हो रहा है जो परम भगवान है, एवरीथिंग इन माई लाइफ इज हैपनिंग अंडर डायरेक्ट सुपरविजन एंड ऑर्डिनेंस ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड, नो डेवी गॉड, नो माया, नो बड़ी, क्योंकि जब वो फाइल अपने आप में लेते ना तभी उसका बोलते ना वो राष्ट्रपति रूल कहते ना प्रेसिडेंट रूल, तो सब उनके हाथ में लेते हो, सब लोग हाथ से निकाल लेते, ग्रह तारे देवता जितने भी उनको भी अधिकार है ना अपने अपने को फल देने का, आपको समझो बारिश में भीगा भी बुखार दिलाना है तो इंद्र देवता उसमें उसका सहभाग है, उसकी तरफ से आएगा, और फिर भूकंप भूमि की तरफ से आएगा, और फिर वायु की तरफ से कुछ निपा वायरस आ जाएगा आपके अंदर, तो अपना अपना देवता सब लोग का कर्मों का फल के लिए काम करते रहते हैं भगवान की इच्छा के अनुसार, लेकिन ये इनडायरेक्ट ना बहुत सारे लोग अपना अपना काम कर रहे हैं, लेकिन ये डायरेक्ट भगवान के निर्देशन में क्या डिलीट करना है, क्या रखना है, कितना टोकन रखना है और कितना नया चीज डालना है उसके अंदर, ये सारे भगवान तय करते हैं और आपका हाथ पकड़ के आपको उसमें से लेके भी जाते हैं, आप चुकेंगे नहीं उससे, भगवान कोई भी आपका कर्म है ना 100% डिलीट नहीं करते हैं, क्योंकि फिर हमको गर्व होगा उस बात का, देखो हम कितने महान हैं, उसका टोकन जरूर रखते हैं, हाय आपके अकाउंट में बोलना मत, दिस इज देयर आई हैव रिड्यूस्ड इट, मैंने उसको एकदम टोकन बना दिया है, ये जानकारी होनी चाहिए ना हमको, जितना भी संकट आएगा अगर आपको यकीन होगा ना, ये तो मैंने हिम्मत की बात की ना, कैसे आप हिम्मत बनाए रख सकते हो अगर आपको यकीन है कि हर चीज उनके ही द्वारा निर्देशित है, उनके ही द्वारा वो संचालित है, ordained by his desire only, और वही उसके प्रमुख नायक है करने में, और एक बात है कि वो मेरे कल्याण के लिए ही काम करते हैं, ये आपको यकीन होगा, उछल पुछल तो होती रहेगी लेकिन आप नहीं रहेंगे, आप स्थिर रहेंगे इसके अंदर, कष्ट बहुत होगा, दुख होगा, फिर हर बार कहेंगे थैंक यू, डर तो है ना बीच में, थैंक यू बोलना है लेकिन इसे रोते हुए बोलेंगे, थैंक यू माय लॉर्ड, प्लीज कंटिन्यू डूइंग इट, थैंक यू माय लॉर्ड, दुख होगा ना बहुत, दर्द होगा लेकिन फिर भी बोले बोल सकेंगे आप, और जिस समय भयंकर उथल पुथल हो रही है और आप फिर भी थैंक यू बोल रहे हैं। आपके अंदर प्रचंड आध्यात्मिक शक्ति संचार करती है, अंदर प्रवेश करती है, ट्रेमेंडस स्पिरिचुअल पावर एंटर्स इन यू। तो अगली बार उसके बड़ा भी संकट आएगा तो उसमें भी आप थैंक यू बोल सकते हो, उतना बल आएगा आपके अंदर। और जैसा थैंक यू करेंगे भगवान और उत्साह के साथ में आपको काम करने लगेंगे और अच्छा उम्मीदवार भी गुड कैंडिडेट। और जितना हम संघर्ष करेंगे उसके साथ में उतना पीछे पे जाते हैं, क्योंकि भगवान है ना आपकी इच्छा के खिलाफ नहीं करते। आप बोले इलाज करो तो आप इलाज करेगा, आप बोले नहीं करना मुझे तो छोड़ देगा, क्या करेगा। कंसेंट होता है ना ऑपरेशन के अंदर, पहले कंसेंट बनना पड़ता है ना। सुपरा मेजर ऑपरेशन करने जा रहा हूँ 8 घंटे का, बोला करो सर, मैं भी बोल रहा हूँ, मेरी वाइफ भी बोल रही है, मेरा पति भी बोल रहा है, करो टाइम करो, करो ऑपरेशन, देखो मरने का रिस्क है। कोई बात नहीं सर, हमको आपको पूरा भरोसा है, आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं, बेहोश क्यों ना हो आपके साथ हैं। तो फिर डॉक्टर को भी ऐसा ना एक उत्साह आता है कुछ करने में, उसका भी डर चला था कि मैं इनको फंसने जाऊँ कुछ उसके अंदर, तो दिल से कब करेगा। आप बोले दिल से मरेगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं था, आप कोशिश तो करो, हम आपके साथ है, आपको कोर्ट में लेकर नहीं जाएंगे। डॉक्टर भी ना खुले दिल से दिलो जान से ऑपरेशन करेगा और चमत्कारी प्रदर्शन भी आ सकता है जब वो ऐसा दिल से करेगा। और डर डर के उसको ऐसा देखो ऐसा कुछ धमका के करेंगे तो फिर वो कैसा अपना दिमाग लगाएगा उसको। तो भगवान को भी डरने की जरूरत नहीं है, भगवान को सर्वतोपरि है, लेकिन वो भी आपके इच्छा के खिलाफ आपको इंटरफेयर नहीं करेंगे। अभी तक कभी नहीं किया उन्होंने, आज तक नहीं किया है, अभी क्यों करेंगे। आप उनको अपने आप को उनके हाथ में सौंप देंगे ना तो फिर वो पूरा चार्ज लेंगे। आप सौंपने को तैयार नहीं तो कोई चार्ज क्यों लेंगे वो। और उसमें भी आपने अगर 50% सौंप दिया तो 50% ही चार्ज देंगे और बाकी 50% चार्ज बाय डिफॉल्ट उन लोगों के पास रहेगा जिनके पास पहले था। माया देवी देवता सब मिलकर आपको अच्छी तरह पटकते रहते ना, सब लोग के हाथ में रहता ही है, चाहे उनके ही पास है वो, लेकिन आपने जितना निकाल के इनके हाथ में दिया उतना ले लिया, जितना पकड़ के रखा है उतना उनके हाथ में। आप बाय डिफॉल्ट ऐसा नहीं कि 60% भगवान आपके हाथ में दे रहा हूँ और 40% उनके हाथ में मत दो मेरे हाथ में रहना, ऐसा नहीं होता। वो बचा हुआ बाय डिफॉल्ट 40% उसके ही हाथ में रहेगा जिसका हाथ पहला था। यू आर नो बडी इन बिटवीन, आपके हाथ में कुछ नहीं होता है, आपके हाथ में खाली हाँ या ना बोलने का। इसलिए उत्तर प्रदेश से डरना मत, वेलकम देम और थैंक यू, थैंक देम फॉर द लॉर्ड, थैंक यू फॉर द लॉर्ड। वही आदमी जीवन में सफल होता है, वही आदमी उथल पुथल भयंकर संकट कष्ट पीड़ा यातना से भी चमकता है। आप देख रहे इतना कष्ट हो रहा है इसको, इसका चेहरा देखो, तो भावना देखो कितना आनंद में है वो, इतना इतना कष्ट तड़पता है लेकिन फिर भी उसके मुंह की मुस्कान देखो, उसका चेहरे का तेज देखो, ये भी आपको नजर आएगा। और ये केवल चमत्कार जो है ना, जो भयंकर दुख भरी घटना में भी आनंदी रहना और चमकते रहना, ये चमत्कार केवल भक्तों के जीवन में होता है। माया देवी के साथ में चमत्कार नहीं होता, वो तो जो मारते हैं तो किसी को उठने ही देती नहीं है, जब मारते हैं अपने हाथ से तो आप चमकते हो हर एक फटके के साथ, क्योंकि उनकी उनका जो तरीका है वही दिव्य है ना, उसमें कोई ऐसा मैकेनिकल हिसाब किताब नहीं है। मैकेनिकल हिसाब किताब का मतलब क्या है, जो पिताजी ने आपको 5 रुपए दे दिए और आप बनिया के पास गए, बनिया को बोले 4 4 स्क्वेयर सिगरेट दो, तो 4 4 स्क्वेयर सिगरेट देगा, बचे हुए चिल्लर वापस कर देगा। और वही 5 रुपए अगर आप अपने काका के पास गए, काका 4 4 स्क्वेयर दो, तो वो 4 लाफा लगाएगा। क्या अंतर है उसमें, एक तो कुछ बोला नहीं, पूछता ही उम्र का आदमी था वो, उसने 4 4 स्क्वेयर दिया आपको, पैसे वापस दिए, शांति से कुछ बोला भी नहीं। दूसरे आदमी ने 5 रुपए भी रख लिए और 4 लाफा भी लगा दिया, 4 स्क्वेयर कहाँ चला गया पता नहीं। क्योंकि वो काका है, वो आप पर प्रेम करता है, वो आपकी हर इच्छा नहीं पूरी करेगा जो आपके कल्याण में अच्छी नहीं है। दुकानदार बेबी गॉड की तरह है, उसको हिसाब किताब का ही काम है, उसका जो है वो है, उसमें कोई प्रेम नहीं उसका, तो किसी के नियम से बंधा हुआ है, इसलिए वो ना चेंज करेगा उसको ना और कुछ करेगा, जो है वैसा ही करता करेगा व्यवहार, जैसे लिखा गया ना एसओपी वैसा ही व्यवहार करेगा। लेकिन काका एसओ पी के परे होता है, वो देख रहा है कि बच्चा सिगरेट पी के गुंडा बनेगा आगे तक, हाँ तो 4 लाख देगा, 5 रुपये भी छीन लेगा और पापा को बताएगा जो जरूरी है वो करेगा। पापा लेगा कितना दुष्ट है काका, देखो दुकानदार कितना अच्छा है, तुम बोला भी नहीं मुझे काका कितना दुष्ट है, बोलते पापा को बोल दिया, पापा ने और घर आके 10 तमाचे मारे, तो क्या चल क्या रहा है ऐसा लगेगा। लेकिन ये सारा चीज जो हो रहा है वो आपके कल्याण में हो रहा है, प्रेम के हिस्से में हो रहा है, वो ये समझना जरूरी है। और कब चिल्लाएंगे आप, काका भी बेकार है, पापा भी बेकार है, क्योंकि आप जब अज्ञान में होंगे ना तो ऐसे बोलेंगे। लेकिन जब आपको ज्ञान होगा, मतलब जब बड़े होंगे, तो जाकर आप पापा को भी धन्यवाद देंगे, काका को भी धन्यवाद देंगे। तो कभी दुकानदार मिलेगा उस समय जाकर गाली भी दिखाएंगे, उनको ऐसे वो पड़ी नहीं हमारी कुछ बाला काफी सिगरेट मांग रहा है, तुम सिगरेट दे रहे हो उसको, यही फर्क होता है प्रेम के अंदर। भगवान के द्वारा जो योजनाएं भी बनती है ना आपके लिए, कठोर योजना बनती होगी, अच्छे फटके पड़ते होंगे आपको, लेकिन वो आपके हित में होते हैं, आपके कल्याण के लिए होते हैं, और प्रेम से किए जाते हैं, प्रेम से किए जाने वाले दंड है वो। जब पुलिस आपको मारता है ना और माँ आपको मारती है, तो अंतर है ना उसके अंदर, पुलिस को कायदे से मार रहा है, दंड दे रहा है, तो माँ जब लाफा लगाती है तो आपके कल्याण के लिए, कल्याण के लिए मतलब आपके व्यक्तित्व को सुधारने के लिए, आपके दोष को निवारण करने के लिए प्रेम से आपको दंड देती है, तभी दोनों दंड देते हैं, आपको कष्ट होता है, लेकिन आपको बाद में पता चलता है कि पुलिस तो कोई प्रेम नहीं करता है, लेकिन माता तो प्रेम करती है, प्रेम से किया। और जब माता प्रेम नहीं करती है तो उसका भी एक स्टोरी है, क्या होता है, एक चोर था, तो घर में चोर के घर में जन्म हुआ उसका, तो फिर बचपन में माँ बाप भी चोर थे, तो ये भी सीख गया धीरे धीरे, फिर बड़ी चोरी करने लगा। एक दिन इतना चोरी किया, इतने गुने किए कि फांसी की सजा हो गई उसको, तो उसको पूछा गया तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है, तो कहता है मुझे मां से मिलना है मुझे, अच्छी बात है, मां से तो मां बीवी या कोई दादा दादी ले गए, मां को मिलने लगे, तो मां को मिलते उसने उसका कान काट डाला था, ऐसा चबा के कान ही ऐसा निकल गया था, तो हैरान हो गई मां, तो क्यों ऐसा कर रहे हो आप, पुलिस भी हैरान हो गया, अरे मां से आशीर्वाद देने गए हो, चाहे प्रार्थना करो को आशीर्वाद दो करके, तो मां का कान ही काट लिया उसने दांत से, इतना वायलेंट हो गया था, फिलहाल सब लोग हैरान हो गए, कुछ ना कुछ थोड़ा शांत किया उसको, बोलते ये मां ने अगर मुझे पहली चोरी में रोक लिया होता तो आज मैं फंसे के बंदे में नहीं होता, है ना, तो उस समय अगर बहुत पीटती उसको, बहुत मारती, तो शायद वो अच्छा आदमी बनता, चोरी नहीं करता, तो उसको कोई बताया नहीं गया कि गलत काम है चोरी करना, तो खुद भी कर रहे हैं और बच्चे भी करवा रहे हैं, बच्चा भी उनसे भी बड़ा चोर बन गया, एकदम सोफिस्टिकेटेड चोर बन गया, तो फांसी पे लटकने जा रहा है। तो प्रेम के कारण दंड देना भी अच्छा है, और भगवान को अगर आप बोले कि दे दो आप जो जरूरी है वो करो, डू द नीडफुल, तो वो अच्छा ही करेंगे, ऐसा मत समझना कि आपको फिर ज्यादा पैसे देंगे, धनवान बनाएंगे, ऐसे तो लोगों को लगता है कि भक्ति बन गया, भक्त आ गया ना, भक्त हो गया मैं, और लोग कहते हैं कि भक्ति शुरू करने के बाद सारे कर्म मिट जाते हैं, तो मैं भी गरीब हूँ, मेरे घर में कर्म मिट गए होंगे, मुझे अभी अभी बनना चाहिए, सिंपल लॉजिक ना, मैं भक्त बनने के पहले बहुत गरीब था, बहुत कष्ट भी था, इतना था वैसा था, अब मैंने हरे कृष्ण मंत्र एक बार बोल लिया, बोल लिया पुराना हिसाब सब खाली हो गया, अभी आगे भी बोलने वाला हूँ, मतलब अभी आगे मुझे तुरंत अबीर बनना चाहिए, ऐसे माइंड ना, माइंड के अंदर क्या होता है तो बोल नहीं सकता, बहुत लोगों को लगता है ऐसे, बोली क्या करे, 15 साल जब किया ना इम्प्रूवमेंट, ना इंक्रीमेंट हो गया, ना प्रमोशन हो गया, शादी हुआ बच्चा हो गया, क्या है, क्यों करना चाहिए, क्या है, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। हमारे वार्ड में भी ऐसे थे, बोलता रही मैं, जिनको मैंने कई साल मेहनत करके उनको 16 माला तक लाके काउंसिलिंग मीटिंग करके 1999 से 2003 तक अचानक एक दिन छोड़ दिया था, मेरे को मालूम पड़ा, मैं पूछा क्या हो गया, ये सब छोड़ दिया, काय गड़ा प्रभु जी, काय प्रमोशन ना है, पगार वाड़ ना है, घर शांति ना है, काय ना है, काय फायदा सब करूँ, मतलब क्या हुआ कि वो पता ही नहीं चला, वो जब क्यों करना चाहिए और करते हैं लोग, उनको लगता है जब करने से फिर भौतिक समृद्धि आएगी, यश आएगा, कीर्ति आएगी, आ सकती है लेकिन आएगी इसलिए जब नहीं करना है। हो सकता है जो था वो भी चला जाएगा। तो बोलते हैं ऐसे, बोलो जी अच्छा था पहले में ज्यादा मैं रेडी हो गया हूँ, मुझे ज्यादा गुस्सा आता है पहले से, ज्यादा मुझे मन में बहुत से इसके विचार आते हैं, ज्यादा मैं पापी हूँ, पहले अच्छा था मैं, मुझे ऐसा क्यों। हम लोग भी बहुत होशियार है ना, उनको बता देखो आप ऐसे नदी में स्नान करने जाएंगे ना तो साफ पानी रहेगा, जैसे आप पानी जाओगे हाथ पाँव मिलाओगे ना पूरा नीचे का डस्ट है ना ऊपर आ जाता है, पूरा साफ पानी समझ के आप अंदर गए थे तो पूरा डर्ट वाला पानी, टर्बुलेंट पानी ऐसा पूरा आपको नाक कान में घुसता है। तो वैसे ही जब तक आप भक्त नहीं हो और अपेरेंटली आपके अच्छे कर्मों का काम टाइम चल रहा है तो एंजॉय कर रहे हो, एक बार बीच में भक्त बन गए ना तो पूरा पुराना माल ऊपर आ जाता है। ऐसे घर का बहुत साल में घर साफ नहीं किया हो, 3 साल दुबई रह के वापस आ गए हो तो साफ करना चाहिए, तो एंट्री किया तो कुछ नहीं हुआ था लेकिन साफ करने लगेंगे पूरा धूल नाक कान में तो सब जगह ऐसा सफोकट हो जाएंगे आप। तो अगर साफ सफाई कर ही नहीं रहे आप तो अपरेंटली आपका घर ओके लगेगा, फिर दिवाली में जब साफ करने जाओगे तो हर कोने से डस्ट बाहर आ जाएगी और आपको परेशान कर देगी, तो कुछ समय आपको उसको सहना है कि भाई 4-5 दिन चलेगा इसको, उसके बाद में सब चकाचक हो जाएगा। उसी तरह से जो भक्ति में थे बोले इतना तो मैं क्रोधी नहीं था, मुझे बहुत गुस्सा आता है, तो उसका उत्तर सही उत्तर यह है कि गुस्सा जो है ना बाहर निकल रहा है अभी वो समाप्त होने के लिए, लेकिन निकलते हुए तो घर में समझो किसी को टेनेंट को रखा है आपने, वो निकलता ही नहीं है, आप कुछ नहीं कर रहे आराम से हम भी आपको निकालने की कोशिश करो, बल प्रयोग करो तो हाथ जोड़ के दंडवत करके नहीं जाएगा वो, कुछ ना कुछ संघर्ष करके कुछ तोड़ फोड़ करके कुछ गाली देके ऐसा करते करके ठीक है अभी जा तू बाहर पहले, तो वो भी आपको सहन करना पड़ेगा ना, आपको बाहर निकलना ही है तो आपको भी उसका आतंक सहन करते करते उसको बाहर निकलना पड़ेगा, बाहर एक बार गया हो फिर आपको घर में शांति मिल जाएगी। इसी तरह से अभी क्रोध को आपने बोला गेट आउट, नाउ आई एम चैंटिंग हरे कृष्णा, गुरु बोले ठीक है देखता हूँ कितना जप करके पड़ता, आपको परेशान करेगा क्रोध, आप बोले मुझे अभी एकदम विरक्त होना है तो ठीक है, इच्छाएं बोलते ठीक है इतना दिन से आपको संभाल कर रखा था आपने, आप बोलते हैं चले जाओ दिखाते हैं आपको, फिर वो भी अपना रन दिखाने लगते हैं, इसलिए जब वो निकल रहे हैं बाहर तभी वो अपने को कष्ट दे देते ही जाते हैं। तो भक्तों के जीवन का जो टर्बुलेंस है ना वो अच्छे के लिए होता है, या तो आप किसी पाप वाले इच्छाओं से मुक्त हो रहे हैं या किसी भयंकर कर्मों से प्रभाव से आप मुक्त हो रहे हैं, आपका जो सफरिंग है ना वो पिछला हिसाब समाप्त कर जाएगा सफरिंग है, और जो कर्मियों का सफरिंग है वो आगे सफरिंग बढ़ाने वाला सफरिंग है, तो एक के बाद एक और बढ़ जाएगा, और आगे का मैं और कुछ करूंगा और पैसा कमाऊंगा और कुछ करूंगा और मैं अपना साम्राज्य खड़ा कर दूंगा जो मैंने खो दिया है, मैं छोड़ूंगा नहीं, मेहनत करूंगा और कर्म करेगा, अच्छे बुरे डेस्परेट कर्म करेगा और कर्मों का जाल पैदा करेगा और सफरिंग का पूरा व्यवस्था कर देगा। इसलिए भगवान के भक्तों का सहारा बहुत जरूरी है, अगर आपके जीवन में बहुत उथल पुथल हो रही है भक्तों का सहारा मत छोड़ो, देखो वही आपको बताएंगे प्रभु डोंट वरी, कृष्ण भगवान की योजना है, अच्छी तरह बने रहो, अच्छी तरह जब करते रहो, जो कर रहे हो उसको और अच्छी तरह से करो और दिल लगा के करो, पकड़ के रखो भगवान के चरणों को, फिर बाहर हो जाओगे आप, भगवान साथ है आपके, डोंट वरी, जे थे जातो ते थे तुम्हारा सांगा थी सलविशी हाथी धरुनिया, आपका हाथ पकड़ के वो ले जाएंगे आपको संकट से भी, उनका हाथ छोड़ो मत आप बेभरोसे से, श्रद्धा से उनका नींव मतलब क्या साधना भक्तों का संघ को पकड़े रखो उस संघर्ष में घटना में, फिर आप एक दिन ऐसे पार हो जाओगे आपको भी आश्चर्य होगा ऐसे पार हो गया मैं, क्योंकि वो पार कर देते हैं पार लगा देते हैं श्रद्धा से, उनका नींव जो है ना हमारा भक्ति का नींव उसको हमको पकड़ के रखना चाहिए। इसलिए भक्तों के अलावा कोई हमारा सही सहारा नहीं है। भले आपको इसमें से कोई अच्छे भी लगते नहीं होंगे, भले आप इसमें से किसी झगड़ा भी कर चुके होंगे, आपका नहीं करते उसे, लेकिन उनके सिवा आपका कोई सहारा नहीं है। क्योंकि जब आप संकट में आएंगे तो वो लोग सब कुछ भूल जाके आपको सहायता करने के लिए आएंगे, कितना भी नहीं पड़ता होगा आपके साथ, दे विल कम टू हेल्प यू, क्योंकि उनका ट्रेनिंग ऐसा होता है। ठीक है, अभी झगड़े सबके होते हैं, पति पत्नी के होते हैं, ठीक है, लेकिन सच्चे हमारे हित चिंतक जो है ना, भक्ति हो गए। तो देवाहूति जब कपिल देव को पूछती है कि जीव शुद्ध होने के बाद भी इतना अपवित्र कैसे होता है और इतने बुरे कर्म कैसे करता है, तो वो बताते हैं कि पुराने समय पर उस जीव ने गलत चीज के साथ, गलत व्यक्तियों के साथ में संग करके गलत इच्छाएं पैदा की थी, गलत काम किए थे, इसलिए वो अभी गलत परिणामों को भोग रहा है। तो वो कहते हैं क्या करना चाहिए, तो कपिल देव जी बताते हैं कि उनको सच्चे प्रामाणिक संत का संग करना चाहिए। फिर धीरे धीरे उसके सारे बुरी आदतें, बुरे कर्म जो है वो नष्ट हो जाएंगे, और संतों का जो प्रवृत्ति है, संतों की जो प्रवृत्ति है, संतों का जो व्यक्तिमत्व है, पर्सनैलिटी है, उसका प्रभाव उस पर गिरेगा। और जैसे उसने बुरे चीजों को अपनाया था बुरे संघ के कारण, तो अच्छे चीजों को अपनाएगा इनके संघ के कारण, तो परिवर्तन हो जाएगा। तो इसमें की एक ही है, भगवान के भक्तों का संग इसमें बनाए रखना चाहिए। कितना भी तुम लोग थक गए या इंटरेस्ट खत्म हो गया, ऐसे नाराज हो गए, समझो छोड़ना नहीं चाहिए। जीवन में उतर पुतर तो चलती रहती है, उसके लिए जीवन की आप बोलेंगे अब मैं इतना नाराज हो गया, अभी कल से खाने बंद कर दूंगा, खाने की इच्छा नहीं, ऐसा कर सकते हैं? जीवन तो चलना ही है, उसके लिए तो खाना पीना सोना तो हुआ ही। कितना भी घर में कोई मृत्यु हो गई तो भी एक दिन दो दिन नहीं सोएगा, थर्ड डे थक के ही गिर जाएगा, जरूरत है ना वो सोने की जरूरत है। तो उसको हम लोग त्याग के थोड़ी जिंदगी जी सकते हैं, जिंदगी समाप्त तो भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बहुत संकट आया, सहन नहीं हो रहा है, वैसे भी नहीं कर सकते हैं। जीना तो है ही आपको हिम्मत से, क्योंकि जीना क्यों है हिम्मत से, लगता है अभी मर जाए बहुत हो गया, भक्ति भी बहुत हो गया, ना संकट आ रहा है, अभी कैसे सहन कर लूँ उसको, मृत्यु अच्छी लगती है, छूट जाऊंगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अगर आत्महत्या किसी ने कर ली, बहुत उथल पुथल हो गया इसलिए, तो फिर उसको भूत योनि में जाना पड़ेगा। जी कल सुबह ही प्रवचन में बता रहे, जब तक उसका जीवन काल था उस समय तक उसको आत्महत्या के बाद में भूत प्रेत बनता रहना पड़ेगा, और जितने कष्ट हो यहाँ हो रहे थे उसको अपने कर्मों के द्वारा, भगवान की इच्छा के द्वारा, उससे करोड़ों गुना अधिक कष्ट उसको भूत योनि में होगा। और तब उसको लगेगा अरे मैंने क्यों ऐसा किया, लेकिन तब उसके लिए कुछ नहीं कर सकते, आपने जो दिया था उसको नष्ट कर दिया, दूसरा मिलेगा, अगर मिलने का समय 30 साल के बाद में, तब तक ये वेट करो आप। और ये क्यों नहीं करना चाहिए कि आपको जानना चाहिए कि दुख हो या कष्ट हो या उथल पुथल हो या कुछ भी हो, यही मनुष्य जीवन एक ही आसरा है जिससे आप भगवान की प्राप्ति करके इस सारे झंझट को एक ही बार समाप्त कर सकते हैं। इसलिए अभी हारने का कोई काम नहीं है, आने दो और संकट, एक बार यहाँ का बिजनेस फिनिश कर देंगे, सारी फाइलें जो इकट्ठे करके रखी है एक साथ में, भगवान ने जो दिव्य योजना बना के रखी है उसको भी अंजाम दे, तो वो उनको फिर मजबूरी से एक लाइफ का प्लान 2 लाइफ में करना पड़ेगा, क्या करें? आपने कोऑपरेशन नहीं दिया, उन्होंने तो दिव्य योजना नंबर 1 के आपके लिए बनाई थी, आपने अपना सहयोग नहीं दिया, तो फिर वो एक लाइफ का कॉन्सेंट्रेटेड प्लान 2 लाइफ में हो जाएगा, कंटिन्यू हो जाएगा। क्यों ऐसे करना? एक ही चीज है, भगवान को कहना है यस सर, यस सर, थैंक यू सर। प्रहलाद जी का देखो कितना इसमें, कितना इसमें गौरव है, देखो कितने कष्ट सहे, चलो अधिक मास का महीना है, भागवत जी की कथा में होनी चाहिए, लेकिन कितने कष्ट सहे, एक भी कष्ट अगर आपके उसमें आपके जीवन में आएगा ना, उनके जीवन वाला, हम लोग यहाँ पर रहेंगे नहीं, जिंदा ही दिखेंगे नहीं, जितना उनको कष्ट हुआ था, एक ही कष्ट भी काफी था हम लोग को आत्महत्या करने के, लेकिन ऐसे अनेकों कष्ट एक साथ बालक अवस्था में सहे उसने, बड़े बुजुर्ग नहीं थे वो, और सारे उनके कष्ट मिटाने का ना एक ही फॉर्मूला था, अगर वो हिरण्य कश्यप को बोलते यस पापा, बस खाले इतना बोलते ना यस पापा, तो बोलते थे मेरा नाम जपो, मैं भगवान हूं, मेरे नाम से यज्ञ करो, तो यस पापा। एक क्या होता, कुछ संकट उनका कोई आता नहीं उनके ऊपर, जितना उनको आया उसमें से कोई भी संकट आता नहीं था, सब बंद हो जाते तुरंत। और क्या होता, जितना हिरण्यकशिपु ने तपस्या करके कमाया था ना, देवताओं का राज्य, ब्रह्मांड पे राज्य, जितना वो अपने आप उसके नाम पे हो जाता। धनी आदमी के बच्चे को क्या करना चाहिए, यस पापा, और कुछ नहीं करना, यस पापा, जो भी है यस पापा, चुपचाप बैठने का। एक बार वो चले गए, सारा प्रॉपर्टी अपने आप, है ना। दिस इज अच्छे लड़के का क्या गुण है, पता, पापा से संघर्ष नहीं करने, सारा पापा का प्रॉपर्टी अपने आप आपके नाम हो जाए। वैसे दुख बंद करने का भी फॉर्मूला वही था, तो सारा साम्राज्य ऐश्वर्य प्राप्त करने का फॉर्मूला भी यही था, यस पापा हिरण्यकशिपु, यस। लेकिन इतना संकट होने पर भी, इतनी पीड़ा होने पर भी, उसने कभी भी पापा को यस पापा नहीं बोला। जो तो सही पापा थे उनको यस पापा बोलता रहा हमेशा, हर समय उनका ही नाम लेते रहा। इतना संकट आया उनका ही नाम लेते रहा, उनका ही नाम लेते रहा, कभी छोड़ा नहीं। इतना भयंकर संकट आने के बाद भी उनकी श्रद्धा नहीं टूटी, उनका निश्चय नहीं टूटा, उनका जो नियम था, उनका जो स्वभाव था, उनका ही, उनको ही पुकारने का, उनका ही सहारा लेने का, वो तो कभी भी उन्होंने छोड़ा नहीं उसको। भगवान उनके लिए इतने ऋणी हो गए, खुद भगवान इतने कृतज्ञ हो गए कि भगवान उनको बोल रहे हैं, सॉरी प्रहलाद, मेरे वजह से कितना कष्ट हुआ, केवल मेरे लिए, अगर आप यस पापा बोलते तो उसके सारे कष्ट मिट जाते अपने आप ही। फिर आपने वो कष्टों को सहना पसंद किया, कष्टों को सहना स्वीकार किया आपने मेरे लिए, क्योंकि आप मुझ पर श्रद्धा रखते हो। इतने भयंकर हिरण्यकशिपु के सामने खड़े होकर आप श्रद्धा के साथ बोल रहे हो कि पापा ऐसा नहीं करना है, आपको ऐसा ही करना है, उसके लिए आपने आतंक भी सहा ऐसा बोलने के लिए, मेरे लिए क्या आपने, मेरे लिए आपने कष्ट सहन किया, मैं आपसे माफी चाहता हूँ, भगवान बोल रहे उसके, उसके बदले में कुछ मांग लो अभी। तो प्रहलाद ने उसको ना बहुत सोच समझ के भगवान को उत्तर दिया। प्रहलाद ने कहा, नंबर वन, मैंने तो कुछ कष्ट भोगा ही नहीं, वैसे ही नहीं होगा, जब मुझे पहाड़ से फेंका गया तो आपने मुझे झीला, तो मुझे कैसे कष्ट हुआ, जब मुझे सांप के विषैले सांप के बिल में डाला गया तो इतने सारे विषैले सांप थे, एक भी काटता तो मर जाता मैं, लेकिन किसने काटा ही नहीं मुझे, फिर मुझे विष क्या पहला दिया तो मैं पी गया उसको, तो विष असर ही नहीं किया मेरे ऊपर, तो वो भी आपने किया, मैं थोड़ी मेरी बॉडी पे कंट्रोल नहीं करा, अंदर क्या हो गया, विश्व पी गया, पीना पड़ा मुझे, लेकिन वो कुछ नहीं। होली का मेरे को मेरी बुआ मेरे गोद में लेकर बैठी और जलाने लगी, तो जलना मुझे था लेकिन जल वो गई और मैं बच गया। भाला चलाया तो भाला चलाया नहीं, सब राक्षस फ्रस्ट्रेट हो गए, सारे शस्त्र चलाए मेरे ऊपर फिजिकली, कुछ भी फर्क नहीं पड़ा, वो भी आपका ही चमत्कार था। सारा उदाहरण दिया, हाथी के पाव में देने का, तो हाथी ने पाव भर गया, वो पाव मेरे ऊपर रखा नहीं, मैंने केवल एक ही काम किया, आपका नाम मैं पुकारता रहा, और क्या हुआ कैसे बच गया मुझे मालूम नहीं है, दुनिया के लिए मैंने बहुत कष्ट सहन किया। लेकिन नंबर वन हकीकत यह है, कोई डायलॉग मारने नहीं, भगवान को प्रसन्न करने के लिए सत्य बता रहे, सत्य यह है कि मैंने कोई कष्ट नहीं सहन किया, नंबर वन। नंबर टू, आप बोल रहे हैं मैं ऋणी हूं आपका, मेरे लिए कष्ट होगा और कुछ ले लो, देखो भगवान मैं तो व्यापारी नहीं हूं, मैंने जो भी कुछ किया है नहीं किया है वो आपसे कुछ मिलेगा, कुछ मांगने का अवसर मिलेगा, उसने नहीं किया था, इसलिए मुझे व्यापारी मत बनाओ, मैं व्यापारी नहीं हूं, व्यापार के भाव से आपसे नहीं आया हूं, लेन देन के हिसाब से नहीं खड़ा हूं आपके सामने। इतनी उच्च चेतना है प्रहलाद को, देखो। और आपको जब जीवन में कष्ट होता है ना, तो कभी भी उस कष्ट में आपको ये देखना है कि प्रहलाद इतना कष्ट हो रहा है क्या मुझे, कोई भी एक पकड़ के देखो कि इतना हो रहा है क्या, किसी भी चीज में आपको यह अंदर से यकीन हो रहा है कि इतना तो नहीं है, निश्चित रूप से आपको लगे। तो इतिहास में भी, आज के इतिहास में भी जितना कष्ट प्रहलाद ने सहा है, एक साथ में इतना होलसेल में, उतना वो गोल्ड मेडल नहीं है वो आज तक, किसी ने भी इतना कष्ट नहीं सही किया, वो भी इतने सी उम्र में, 5 साल की उम्र में। और भक्तों के अंदर में ध्रुव जैसी तपस्या भयंकर आज तक किसी ने नहीं की, वो भी 5 साल की उम्र में। इतनी अघोर तपस्या भक्त ने भी नहीं की, तो भक्तों में वो गोल्ड मेडल है, और राक्षस और भक्तों को मिलकर हिरण्यकश्यप गोल्ड मेडल है। उनकी तपस्या का मुकाबला कोई नहीं, लेकिन वो पर्पज उसका अघोरी था, तमोगुणी था, इसलिए वो इतना सराहनीय नहीं। लेकिन ध्रुव जी की तपस्या जो है ना, वो बहुत सराहनीय है। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि पिछले जमाने में भक्तों ने कष्ट कैसे सहन किए, उसको पढ़कर समझकर संतों के संग में सुनकर हमको अपना तय करना चाहिए कि मुझे भी उस तरह से सहन करना है। और आप लोगों को मैं यकीन दिलाता हूं, आप करके तो देखिए, उन पर भरोसा रख के तो देखिए, फिर कैसे चमत्कारिक दृष्टि से वो आपको संघर्ष से बाहर निकालेंगे, ये देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे। कैसे मुझे भगवान ने बताया, तो कैसे हो सकता है, भगवान ही कर सकते हैं। मैं मेरा तर्क दृष्टि से तो ज्ञान है, वो समान बता रहे मुझे कि ये मुमकिन नहीं, ऐसा होना मुमकिन नहीं है, लेकिन मुमकिन होते हुए नजर आता है, मतलब आपको अंदर से अनुभूति होती है ये मेरे भगवान ही है, यही मुझे बचा रहे हैं, मेरे सबसे बड़ी चुनौती से मुझे बाहर निकाल रहे हैं, सबसे बड़े संघर्ष से बाहर निकाल रहे हैं, सबसे बड़ी दुर्घटना से मुझे वो बाहर निकाल रहे हैं। ये आपको अंदर से अनुभूति होती है, और आप उसको लॉजिकली दूसरे को समझा भी सकते नहीं है। जैसे मेरा एक्सीडेंट हो गया 3 साल पहले, बहुत भयंकर एक्सीडेंट हो गया, मुझे कुछ भी नहीं हुआ, मैंने पूरी कहानी लिखी और सब लोगों को भेज दी, बहुत लोगों ने बहुत थैंक यू वगैरह बोला, लेकिन मेरे भाई ने मुझे रिप्लाई दिया उसका, तो तुमने इतना सा भगवान भगवान लिखा है, ये ऐसा नहीं है, उधर हाईवे पर आपने बोला ये चमत्कार हुआ वो चमत्कार हुआ, बोला ऐसा नहीं है, वो हाईवे पे कुछ मैकेनिक लोग नेल्स डालते हैं रास्ते पर अपने ही गोडाउन के सामने, 1-2 किलोमीटर आगे गोडाउन रहता है उनका, वर्कशॉप रहता है, उसके अंदर ट्रोइंग वैन रहती है, बराबर वो जब किला लगता है गाड़ी में घुसता है तो कुछ अंतर में जाकर उनके ही टो चेंज के सामने और ग्राहक के सामने वो पंक्चर होती है, गाड़ी का एक्सीडेंट होता है, अचानक वो भाग के आते हैं और टो चेंज भी करते हैं, उसको रिपेयरिंग कराने का बात करते हैं, करते वो करते हैं, आपको लगेगा कितने भगवान दयालु हैं, ऐसा आपको लगेगा, लेकिन ये सब षड्यंत्र है। और तो गाली भी बकी उस दिन में, बोला तो ये सब कुछ नहीं है, ये सब दुश्मनों का और गुनेगारों का काम है, और आप सब उसको भगवान की कृपा समझ रहे। तो वो भाई को मैं समझा नहीं सका, मुझे अंदर से जो अनुभूति हुई उनको मैं समझा नहीं सका। तो ऐसे ही जब भगवान आपको संकट से बचाएंगे, तब कैसे आपको यकीन हो गया अंदर से कि उन्होंने ही बचाया है, ये दूसरों को आप समझा नहीं पाएंगे कभी, और कोई जरूरत भी नहीं समझने, नहीं समझेंगे तो आपको समझ में आया, वो तो गया, जिसको समझाने के लिए सब कुछ किया था उसको समझ में आया ना, और क्या चाहिए, दुनिया को समझने की जरूरत क्या है, समझ गया तो ठीक है, नहीं समझ गए तो छोड़ देना चाहिए उसको। लेकिन भगवान अपने भक्तों के जीवन में चमत्कार करते हैं, जैसे सांप ने काटा ही नहीं, चमत्कार है ना, इतने बड़े विषैले सांप के बीच धारा इतने कोमल बालक को, तो सांप नहीं क्यों नहीं काटेंगे, काटना ही चाहिए उनको, लेकिन नहीं काटा उनको, शराब पिलाए हुए हाथी को बोला चरणों के तले दे दिया तो उछल देगा पूरा, उठा के कर्म बाजू रख दिया रखा ही नहीं। दिस इज डिवोशनल लाइफ प्रभु, ये भक्तों की जिंदगी है, गौरवशाली जिंदगी है, मोस्ट ग्लोरियस लाइफ, आप लोग जी सकते हो, सब लोग हिचकिचाओ मत, ऐसे ही डर के हिम्मत से भगवान को बोलो, यस भगवान डू द नीडफुल, वी आर रेडी। वो रेडी भी किस बल पर बोल रहे हैं, उनके बल पर बोल रहे हैं, जानते हैं कि वो रहेंगे हमारे साथ पूरी श्रद्धा के साथ। और भगवान कैसे है, श्रद्धा कोई रखेगा ना तो बेचारे मजबूर हो जाते हो, अभी जैसे देखो वगासुर ऐसा मुंह खोल दिख रहा है, भगवान ऐसे पेड़ पे बैठे हैं, सब लोग खेल खेल रहे, बोल रहे क्या ये, बोल रहे देखो पहाड़ है कोई, बादल तक पहुंच गया है उसका ऊपर वाला हिस्सा, तो बोल रहे पहाड़ नहीं हाईवे देखो कितना बड़ा हाईवे, कल तो नहीं था आज ये हाईवे कैसे बन गया एक दिन में, बहुत चर्चा करते हैं, तो भगवान सुन रहे पेट में बैठकर, फिर बोलते कोई बात नहीं ना, चाहे वो बादल हो, चाहे पेड़ हो, चाहे रास्ता हो, चाहे गुफा हो, चाहे कुछ भी हो, हमें क्या चिंता की बात है, हमारे कृष्ण है ना। कुछ संकट आएगा, कुछ बीच में बोलते भी है, चाहे राक्षस हो सकता है, तो एक दिन में महामार्ग कैसे बनेगा, यहाँ पर हाईवे कैसे बनेगा, एक दिन में तब तो नहीं चाहेगा, हो सकता है राक्षस होगा ये, सब कुछ बातें करते हैं, ऑल पॉसिबिलिटी। और फिर बोलते हैं सो व्हाट, कृष्ण है ना हमारे, कुछ अगर संकट होगा तो बचा लेंगे आपको, ऐसे बोल के सब उसके मुंह में घुस जाते, सारे लोग घुस जाते अंदर। तो भगवान को आश्चर्य होता है, अरे कितनी श्रद्धा है इनको कि मैं बचाऊंगा, मैं बचाना ही पड़ेगा उनको भी, इतनी श्रद्धा है उनको कि मैं बचाऊंगा। तो भगवान भी उतर गए अपना मस्त बांध के, उतर गए तुरंत भू बंद हो गया उसका, तो फिर भगवान ने उसका वध कर दिया। बस अभी कहानी पर संक्षेप बता रहा हूं, और भगवान सब बच्चे मर गए थे अंदर, पूरे डेड हो गए थे, पूरे कालिया के पास गए तभी तो उसका भी पानी पीकर सब लोग डेड हो गए थे। भगवान ने अपना प्रेम की नजर घुमाई उनकी तरह से, प्रेम दृष्टिपात, सब लोग जीवित हो गए, आनंद में नाचते हुए धरते ले, इतना यकीन है उनको, मरेंगे तो भी जिंदा करेंगे। यह है ना पहले भी, तो आपको ऐसा ही अनुभव आएगा ना, उसके बाद दूसरा अनुभव आएगा ना, आपको लगेगा अरे पिछली बार तो बचाया, इस बार बचाएंगे ना। ये हमारा माइंड है, रास्कल माइंड बोलते हैं। इतना बड़ा अनुभव आपको दिया, ऐसा अनुभव दिया ना कि आप पता है आपको अंदर से कि भगवान ने ही बचाया है, और अगला बार संकट आता है तो फिर सोचते हैं कि पता नहीं उस बार अच्छे मूड में रहेंगे, इस बार पता नहीं क्या है, फिर बचाते हैं वो, फिर भी हम पिछली बार वापस संदेह करते हैं, लेकिन ग्वाल वालों को देखो कोई संदेह नहीं करते, इतनी श्रद्धा है। ऐसी श्रद्धा होने पर भगवान भी मजबूर हो जाते हैं, मुझे बचाना ही पड़ेगा, इतनी श्रद्धा रखते हुए भक्ति मेरे को। तो सबसे बड़ी संपत्ति क्या है, वो श्रद्धा है आपकी, कि श्रद्धा से आप जी रहे अपना जीवन भगवान का नाम लेके, जो भी है वो देख लेंगे, बचाएंगे, संभाल लेंगे। हाँ, वो बालक अपने माता की गोद में किस बात पर सोता है बताओ, कुछ भी पता नहीं, ना उसका अर्निंग का साधन है, ना 9 to 5 जॉब है उसके लिए, अभी भी जन्म हो गया है, हाँ कौन से होल से क्या निकल रहा है उसको पता नहीं है, भूख लगेगी तो क्या करना है मालूम नहीं है, लेकिन पूरी श्रद्धा के साथ, पूरी शरणागति के साथ वो माँ के गोद में अपने आप को रख चुका है, उसको पता ही नहीं कहाँ से भोजन मुंह में गिर रहा है, कहाँ से धरती साफ की जा रही है, लेकिन अपने आप सब हो रहा है। तो उसका रहस्य क्या है, पूर्ण श्रद्धा के साथ शरणागति, ही हैज ऑफर्ड हिमसेल्फ टू द लैप ऑफ मदर विद फुल फेथ, शी विल लुक आफ्टर। वो मर जाएगी लेकिन उसको नहीं मरने देगी, है ना, मुझे वो दूध पिला रही है, वो शेर आता है वहां से। अभी आपने पेपर में पढ़ा हुआ था नहीं, बुढ़ी औरत ने जाकर चीता के मुंह से अपने बालक को जिंदा छीन के लाया, अभी अभी भी लगता है, शी फॉट विथ लेपर्ड। अभी वो आप बोलेंगे अकेले जब शेर आ रहा है, जब लड़के हो तो अकेले जाएंगे, लेकिन जब उसका बच्चा लिया उसने ना, तो उसके अंदर पता नहीं कहां वात्सल्य की और प्रेम की शक्ति आ गई उसके अंदर, वो जाकर उससे लड़ी, थोड़े बहुत स्क्रैच हो गए, ज्यादा कुछ नहीं हुआ, कुछ शेर कर शेर भागते डर गया, वो जो चीता था वो लेपर्ड है गुलदार, तो वो बल कहां से आया उसके अंदर, प्रेम की वजह से आया। और वो प्रेम क्यों आया, क्योंकि ये बालक मुझ पर निर्भर है, द चाइल्ड इज डिपेंडेंट ऑन मी, अभी मेरे सिवा उसके पास उसका पापा भी नहीं है, और पुलिस भी नहीं है, और आर्मी का जवान भी नहीं है, वो अन्य ऑफिसर भी नहीं है, तो मैं ही हूँ, मुझे जो कुछ करना है, और मैं करूंगा नहीं तो वो जाएगा, मैं कुछ करूंगा तो कुछ हो जाएगा, तो सारा बल उसके अंदर आ गया कि आई एम द ओनली वन। वैसे जब भक्त भगवान को पुकारता है ना, तो भगवान को लगता है कि आई एम द ओनली वन, और किसी को नहीं पुकार रहे थे, तो मैं नहीं जाऊंगा तो कौन जाएगा, I have to go। वो दुर्बल माता भी जो है अबला बोलते उसको ना, माता स्त्री को, वो अबला भी शक्तिमान हो जाती है, और बालक को गुलदार के मुंह से छीन के बचा के लेके आती है। तो ये तो हम अबला माता की बात कर रहे हैं, वो भी शक्तिमान हो सकती है, अरे जो सक्षम है पूरी तरह से, पूरी तरह से ऑल पावरफुल है, उसको पुकारेंगे तो उसको उसको तो यश ही मिलना है जब जाएंगे तो किसी को बचाने के लिए। मगरमच्छ उसको नीचे से पकड़ रहा है, हाथी का पांव को इतना पावरफुल है, कहते हैं कि 2000 हाथी का बल उस हाथी में था। वो हाथी का मुंह में मुंह क्रोकोडाइल के मुंह में उसका पैर गिरा हुआ है और वो असहाय हो गया एक समय पे, जब मैं कुछ नहीं कर सकता। आपको पता है भगवान ने क्या किया? हाँ रे गरुड़ आ जाओ, मुझे पुकार रहा है, करो घर तैयार करो, जाना नीचे अपने को, कितना लगेगा? हाँ 4-5 दिन में पहुंच जाएंगे। ऐसा भगाया ना उसको गरुड़ को, ऐसे भगाया, ऐसे भगाया, गरुड़ बेहोश हो गया, ढाल आया उसको। मैंने सबसे वेगवान भगवान का वाहन गरुड़ जी, वो भगवान के द्वारा भगाए जाने पर उतना भाग नहीं सका जितना उसको भागना चाहिए था, इसलिए वो पूरा शक्ति लगाने के बाद बेहोश हो गया। तो भगवान मेरे क्या कर, टायर पंचर हो गया, अभी क्या करूँ? ब्रह्मा को फोन कर रहे हैं, राजवंश भेज देना, तुम उसको बोले बोर भेज देना। नहीं, वो बेहोश गरुड़ को कंधे पे लिया, भागी खुद भगवान। इमेजिन श्रद्धा और शरणागति क्या कर सकती है और क्या भगवान को क्या करने पे मजबूर करती है? वो भगवान रुक नहीं गए रास्ते पर, भी कभी नहीं रह सकता हूं मैं, वहां नहीं टूट गया, उसको मेरा होश लाना पड़ेगा, उसका इलाज करना पड़ेगा। उसको कंधे पे लिया बेहोश को, सीधा पृथ्वी पर आए और सीधे अपने 2 करकमलों से उसको निकाला भगवान के बाहर। और कहते जैसे भगवान के करकमलों का स्पर्श हुआ गजेंद्र को, तो गजेंद्र जो है ना पूर्णतः शुद्ध हो गया, सारी मायावी चेतना से शुद्ध हो गया। वट एवर रिमेन, अभी तो बहुत सारा तो शुद्धि उसका हो ही गया था, 1000 साल युद्ध करते करते सारी उसकी आसक्तियां और इच्छाएं खत्म ही हो गई थी। थोड़ी बहुत जो सूक्ष्म रूप में थी, भगवान के दिव्य करकमलों का स्पर्श होते ही पूर्ण शुद्ध हो गया। मरने के लिए किया होगा जरूर का इलाज, हॉस्पिटल ले गए, लेकिन भगवान आपकी पुकार की कशिश कितनी तेज है उससे भगवान भी मजबूर हो जाते। इतना बड़ा तलवार उठाकर हिरण्यकश्यप बोल रहा है, किधर है तुम्हारे भगवान बताओ? तो शांति से बोल रहे, कैसे बताओ, तो कण कण में समाये हुए हैं, और इरिटेटिंग आंसर है ना। वो पूछ रहा है ग्लास में है क्या बोल, तंबे में है क्या बोल, वो तो कण कण में समाये हुए हैं। तो बोल रहा है ये इस कमरे में है क्या? बोल रहे इस कमरे में भी है, क्योंकि सब जगह पर है। अभी देखता हूँ तुम्हारे भगवान क्या करते हैं, कमरे में है तो भाई तुम्हारा अभी वध कर देता हूँ। ऐसे करके एक मुक्के से खंबे को मारा, तो भगवान को टाइम दिया था क्या उसने? तो भगवान मैं कल बोल जाऊँ आप थोड़ा वेश भेष बना के तैयार रखना, थोड़ा प्लानिंग मेरी करके ड्रेस वेस करके रेडी रहना, मैं बोलने वाला हूँ कमरे में। ड्रामा में तो टाइम होता ना आपके पास, 3 महीने का टाइम होता है आपके पास, पूरा खंबा रखना है, वो ईट रखनी है, वो ईट टूटनी चाहिए, ऐसा हमने बहुत सारे दान रखी है उसके लिए। कभी पेपर का बनाया था कम्बा, कभी ईट का बनाया था, कभी किसका बनाया था, ताकि वो हिलने के लिए काम का जो आदमी खड़ा है उसको धक्का देगा तो पूरा खम्बा गिरना चाहिए, ऐसा कुछ हमने किया है। लेकिन भगवान को प्रहलाद ने टाइम दिया था, जब उसको पूछा था उसने जवाब दिया, कहते हैं भगवान इमरजेंसी में तत्क्षण भगवान हाफ मैन हाफ लायन रूप बनाकर खंबे को माता बनाकर खंबे के अंदर प्रकट हो ही चुके थे पहले से ही। वो जब उसने बताया कि इस खंबे में भी है, उसके बीच में जो खंबे को मुक्का मारने तक जो समय था कुछ क्षणों का, उसके पहले ही वो खंबे में आधे मनुष्य आधे सिंह का रूप लेकर तैयार थे। क्यों तैयार थे? क्या वो नौकर है क्या अपने भक्त के? जैसे नचाएगा ना नाचना है उसको, ऐसा क्या? नहीं, मेरा भक्त जो है ना मेरे लिए सब सहन कर रहा है। तो मेरी मम्मी जो है ना वो फ्रंट सीट पे बैठी थी ये ड्रामा के अंदर, हाँ उसको ले गए थे देखने के लिए, और आदिकश्यप प्रभु हिरण्य कश्यप थे, मेरी छोटी सी रूपमंजरी प्रहलाद थी, और वो आदिकश्यप प्रभु 6 फुट के ऊपर से 1.5 फुट का मुकुट उसके ऊपर, 4 फुट की तलवार, और हाथ उसके 2.5 फुट के, तो 2.5 फुट के हाथ में 4 फुट की तलवार, मतलब कितनी ऊपर गई होगी वो, और वो उठा के बोल रहा अभी मार दूंगा, तो मेरी मां डर गई, इतना बड़ा अभी इतना लंबा चौड़ा उससे तलवार उठा के, अभी बेटी का बेटी खड़ी सुनने, हरे कृष्ण अल्लाह तो बिल्कुल निर्भय थे ना, वो कुछ डरे नहीं, वैसे ये भी आराम से खड़ी, प्रहलाद ने बताया धंधे का कोई काम नहीं। वैसे प्रहलाद तुम्हें डायरेक्टर बता रहे हैं, डोंट वरी आई एम देयर। उसने ऐसा उंगली दिखाया ना, तुरंत प्रकट हो गए, तत्क्षण प्रकट हो गए। देखो आप बोले कि पता नहीं आएंगे कि नहीं आएंगे, आप बुलाओ तो सही, आप बोलो तो सही, श्रद्धा से पूरी श्रद्धा के साथ बोलो ना, वो मजबूर हो जाएंगे आने के लिए। क्या करेंगे वो, इतना प्रेम करते भक्त उनके ऊपर, तो वो भी भक्त पर प्रेम करते हैं, उनको प्रेम चाहिए, प्रेम के ही भूखे रहते हैं। वो तो राजपुत्र है, हिरण्यकशिपु का बेटा है, इसलिए नहीं आ रहे वो, प्रेम करते इसलिए आते हो, श्रद्धा रखते इसलिए आते हैं, मजबूर हो जाते हैं। तो आपके जीवन में उतर उतर पुतर हो रही है, आपको असह्य हो रहा है, सही सहन करने में शक्ति नहीं हो रही है, पुकारो उनको आप, क्यों डरते हो, क्यों संदेह करते हो? समझो संदेह करके आपने पुकारा, रिजल्ट नहीं आया, लॉस नहीं कुछ आपका, लेकिन शायद रिजल्ट मिल सकता है, तुरंत ही आता है। बिना संदेह को पुकारेंगे तो आपको जवाब मिलेगा ही मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा, 100% तो सुनने के लिए बैठे हैं वो, सुनने के लिए रहते ही बैठे हुए, जब पुकारो आप खाली बुलाते तुरंत। हम लोग को श्रद्धा ही नहीं है, हमको डाउट है मन में, और हम लोग ऐसा है। तो भक्ति का जीवन क्या है, भक्ति का जीवन अल्टीमेटली वो गैदर करना है, श्रद्धा, शरणागति, निश्चय, और ये सब कुछ जो है ना, जो अच्छे अच्छे गुण हैं जो आपको चाहिए, वो केवल भक्तों के संग में मिलते हैं। समझो आपको लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, हौसला ही नहीं आते, वो हौसला भी आपको भक्तों के संग में मिलेगा। गिरा हुआ आदमी भक्तों के संग में खड़ा हो जाएगा, बुझा हुआ आदमी भक्तों के संग में खिल जाएगा। इसका आत्मविश्वास खोज बैठा है, आत्मविश्वास का द्वारा खड़ा हो जाएगा। जो जो आपको जीवन में अंदर की शक्तियां चाहिए वो तो सारे भक्तों के संग में प्राप्त होती है। तो बाहर के लोगों के संग में आपको थोड़ा पैसा मिलेगा तो ये मिलेगा, अंदर से शक्ति जो जरूरी होती है ना, वो केवल भक्तों को दे सकते हैं। प्रोफेशनल काउंसलर्स भी आपको वो दे सकते हैं, वो तो खाली खोखला काम अपना फॉर्मूला यहाँ वहाँ अप्लाई करते रहते हैं प्रोफेशन के रूप में, लेकिन भक्तों जो करते हैं ना वो दिल से करते हैं, जब भी करते हैं आपके लिए वो दिल से करते हैं। और आप लोग सोचो गहराई से, इनमें से कई लोगों से आपकी पट्टी पट्टी नहीं होगी, लेकिन ऐसे ही एक भक्त के द्वारा ही आप भक्त बने हुए हैं। ऐसी कई घटनाएं मुझे पता है कि जिसने भक्त बनाया उनको, उस भक्त से उनका झगड़ा है, जो काउंसलर ने उनको हेल्प किया उस काउंसलर से उनकी पट्टी उन्होंने चेंज कर दी काउंसलर। ये भी सब कुछ भक्ति दुनिया में क्या है ना, हर प्रकार की परीक्षा होती है। जिसने सहारा दिया उससे दुश्मनी कर बैठते हैं स्वार्थ के वजह से, लेकिन फिर भी संकट में रहेंगे तो भी आपको मदद करेगा। क्योंकि सच्चे भक्त होते हैं निरपेक्ष होते हैं, कभी बुरी घटना वो खाली अभी सामने वाली घटना में मेरे लिए क्या सेवा है वही देखते रहते हैं। इसलिए उनके संग में आप जब भी जाओगे ना, आपको सहारा ही होगा, नुकसान नहीं होगा आपका। इसलिए देवाहुति को कपिल देव जी सारांश में बताते हैं, सारा कल्याण जो आपका है ना वो भक्तों के संग में छुपा हुआ है, इसे भक्तों का संग बनाए रखो, उसी को पोषण दे दो। भगवान फिर आपका ये मूड देखकर आपके भी जाते हैं, क्योंकि वो ना अपने भक्तों को बहुत प्रेम करते हैं, और जो भी उनके भक्तों के लिए कुछ करता है उस पर वो बहुत ऋणी हो जाते हैं, क्योंकि इस जीवन में फंसे हुए लोगों को उद्धार करने का काम उनका है, उनका मिशन है वो, और उनके इस भक्तों दुनिया के लोगों को बचाने के मिशन में कोई लोग उनको मदद करते हैं उनका जिम्मेदारी लेकर, तो वो मेरा काम उन्होंने किया इसलिए उनके ऋणी हो जाते हैं। इसलिए भक्तों पर कभी भी आपको कुछ मदद करने का मौका है ना तो उसको छोड़ना नहीं आप, क्योंकि इसमें दो काम होते हैं, एक तो भक्त को संकट से आप पहुंचाएंगे, दूसरा एक होल सेल आपका कनेक्शन भगवान से हो जाएगा, एक ही साथ में वो आपका उनका हिसाब किताब, जैसे आपने वो काम किया आपका कमीशन आपको शुरू कर क्या बोलते हैं आपको भक्ति है ना, मैं आपको नाम दूंगा, श्रद्धा का मूल्य लूंगा, और साथ में दस्तूरी लो इलो, दस्तूरी मतलब क्या, तेरा कमीशन भी ले लूंगा भगवान से। दो तरह के लाभ है इसमें, इसलिए कभी पीछे नहीं हटना चाहिए, हिम्मत से जीना चाहिए। इस प्रकार से मैंने आपके लंबे प्रश्न का छोटा सा उत्तर दिया। और भी प्रश्न है इसका? कुंती देवी को देखो आप, कितनी हिम्मत है उसके अंदर, क्या क्या संकट नहीं सहने उसने एक स्त्री होने के नाते। उसमें एक भी आपको आएगा तो कितना कष्ट होगा आपको। और वो बोल रही है कि आने दो और आने दो, विपदा संतुता शश्वत पितृतत्व जगत गुरु। हो सकता है कि जब वो संकट उसको आ रहा था तब धन्यवाद नहीं दिया उसने, तब नहीं बोला कि आने दो, तो समय के बाद में बोला कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको भी संकट जब आया तभी रोते रोते चिल्लाने की जरूरत नहीं, थैंक यू माई लॉर्ड, टुमारो मॉर्निंग यू कैन से थैंक यू माई लॉर्ड। हाँ डोंट वरी, आज आपको संकट हो गया तभी थैंक यू बोलने भूल गया तीव्र घटना के प्रभाव के अनुसार, अगले दिन उठ के तुरंत बोलो थैंक यू माई लॉर्ड, चलेगा? कुंती ने भी बहुत दिन की बात में बोला आने दो, आने दो और आने दो, क्योंकि वो बोल जो उसके है ना वो अनुभूति के बोले हैं, क्योंकि हर भयंकर संकट के आने के बाद में उनको भगवान के सानिध्य का पुरस्कार मिला था, भगवान के मदद का पुरस्कार मिला था, भगवान के होने का विश्वास और दृढ़ हो गया था कि है वो हमारे लिए, हर संकट में दौड़ के आए। ऐसे क्या कहते हैं ना, इनकंसीडरेबल, अकल्पनीय रूप से वो आए हुए हैं, हम यकीन नहीं कर सकते। किस अभी आपने अगर ड्रामा देख रहे हैं द्रौपदी वस्त्र, तो आपको पता है, बच्चों को पता है, अभी देखो हवा से आप उधर को उधर का भी बैठा है, उधर से उधर से कपड़ा आएगा, उधर एक पुली है, वहां से एक इधर पुली है, वो खींचेंगे तो उधर से आएगा, वो हाथ हाथ लगाएगा उधर उधर है, वो विंग में देखे बोलेगा तो उधर खड़ा है ऑलरेडी, सब ड्रामा देख रहे हैं उसको मालूम है किधर से आएगा। तो आप लोगों को सबको पता है, जैसे गिरिराज गोवर्धन का ड्रामा चल रहा है सबको पता है, उठाएंगे उसको है ना। आप सोचो जब वो ड्रामा चल रहा था, जो एक्चुअल घटना हो रही थी, तभी किसको पता था कि उठाएंगे? किसी को पता नहीं था, लेकिन फिर भी श्रद्धा थी कुछ ना कुछ पदत्तर करेगा ही, लेकिन सोचा नहीं था कि पर्वत को उठाएगा, लेकिन इस संकट से जरूर बचाएगा, कैसे बचाएगा मालूम नहीं, और आज जनता को सबको मालूम है। वैसे द्रौपदी को मालूम नहीं था, वो तो अपना कोशिश कर रही थी, उसको पता नहीं था कि आखिर में जब मैं सबको छोड़कर उनको पुकारूंगी तो वस्त्र के रूप में, अंबरा अवतार के रूप में आएंगी, ऐसा पता नहीं था, वो ऐसे ही पुकारा था तो कैसे बचाएंगे मुझे नहीं मालूम, मैं तो पुकार रही हूं आपको। उस समय लॉजिक है ना, तर्क, तर्क को पूरा तोड़कर भगवान बचाएंगे आपको। तो वैसे ही सारे पांडवों के, कौरवों के, भीष्मदेव के, द्रोणाचार्य के, कंस के, दुर्योधन के, सारे कल्पना के बाहर जाकर भगवान ने ऐसा बचाया ना, तो लोग हैरान हो गए, दुशासन तो बेहोश होकर गिर गया, सब लोग हैरान हो गए, अरे व्हाट इज दिस, ये कैसे हो सकता है। वैसे जब पर्वत उठाया तब लोग हैरान हो गए, अरे इतना बड़ा पर्वत एक 7 साल के बच्चे ने कैसे उठाया, उसको उसका हाथ दुखता होगा शायद, उसका चक्कर आती होगी शायद, ये होता होगा तो वो कुछ ना कुछ कर रहे हैं उसके लिए, वो तो बड़ा आराम से। ऐसे ना चमत्कार करने की प्रचंड शक्ति भगवान के अंदर है, और वो कर सकते हैं आपके जीवन में भी कर सकते हैं। ये मत समझना कि भागवत जो है ना वो उधर 12 कैंडो में खत्म हो गया, अभी वो तो भगवत का है, नहीं वो भागवत आज भी चल रहा है, आप उस भागवत के पात्र बनेंगे तो भागवत आपके जीवन में आज भी चलेगा। पात्र बनने का मतलब क्या है, जैसे भागवत के पात्रों ने किया अपनी जिंदगी में, भगवान का शरणागति स्वीकार किया, वैसे आपके भी जीवन के अंदर संकट आएंगे, तब आपने भगवान का सहारा लिया तो आप भागवत के पात्र बन गए, और जब भागवत में भगवान ने जो किया तो भगवान को करना पड़ेगा, क्योंकि तो भागवत चिरंतन है, भागवत इज गोइंग ऑन कंटिन्यूसली, भागवत वहां पर किताब में समाप्त नहीं होता है, भागवत हमारे आपकी जिंदगी है, भागवत इज योर एंड माई लाइफ। जब तक आप भगवान की शरणागति में हो आपका जीवन ही भागवत है, भागवत एक्सटेंशन दिया था इसी के लिए कि आगे भी चलता रहे। चैतन्य चरितामृत भी आज भी चल रहा है, आप उनके मिशन में सहायता देंगे तो चैतन्य लीला आज भी चल रही है प्रचार की, आप सहायता देंगे उसमें, अपना पात्र बनेंगे उसके अंदर, तो चैतन्य चरितामृत आज भी चल रहा है। पृथ्वी थी आते सर्व नगराधि ग्राम, जब उन्होंने ऐलान किया उस समय तो नहीं हुआ था ना ये, इसका मतलब आगे हुआ ना कि चैतन्य चरितामृत खत्म हो गया तो वो भी खत्म हो गया, वो श्लोक भी वहीं समाप्त हो गया। क्या अभी लीला ही खबर खत्म हो गई तो अभी कैसे होगा? लेकिन जो उन्होंने लीला में कहा था पृथ्वी थे आचे सर्व नगराधि ग्राम सर्वत्र प्रचार वैव मोर नाम, वो तो आगे होने वाला है ना, तो तब तक तो चैतन्य चरितामृत चलेगा ही चलेगा, कैसे समाप्त होगा वो? हमारे आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कैसे पात्र बनते हो उसके अंदर, आपकी जिंदगी में भगवान भागवत और चैतन्य चरितामृत चलाएंगे, आप भी उसका हिस्सा बनेंगे। इतनी हिम्मत कैसे आई कौरव के अंदर बोलने की, और आने दो और आने दो, तो श्रद्धा है कि संकट के अंदर पुकारने से ही उनका सानिध्य तीव्रता से प्राप्त होता है। मोस्ट इंटेंसली यू विल गेट एसोसिएशन ऑफ द लॉर्ड व्हेन यू कॉल हिम इन द मिडल ऑफ मिजरीज, एवरीथिंग इज देयर फॉर अस, इस समय पे क्या करना है और कैसे हो जाएगा चमत्कार, केवल हमको भी बोलना है यस सर, उसपे लेना है भाग, पात्र बनना है उसके, फिर आगे का सब भगवान की जिम्मेदारी है। आपका पात्र बनने के बाद सारा ड्रामा उनके हाथ में, क्या स्क्रिप्ट लिखना है और क्या पर्दे लगाने और बोलते लाइट लगाना है, पूरा उनके हाथ में है। तो देखो जैसे ही प्रहलाद जी पात्र बन गए बोले हाँ सब जगह समाविष्ट है, हाँ इसमें भी है, तत्क्षण पैदा हो गए उधर, सारा भेस लगा दो मेकअप करके, इसने ऐसा सोच कर रखा था क्या अभी वो हाथ में हाथ में, क्योंकि ऐसा वरदान दिया ना तो यही एक उपाय बचता है, सब लोग ऐसा ऑलरेडी रेडी थे उसमें, तो पता था कैसे ऐसा होने वाला है, नहीं किसी को पता नहीं था, यहाँ तक कि देवता लोग तो पहचान भी नहीं रहे कौन है भाई, लक्ष्मी देव बोल रहे थे तो मेरे पति नहीं है, आई डोंट नो ये कौन है, आई डोंट नो बाबा आई डोंट नो, बोल रहे आप जाओ बोले मैंने जाती इनको, मतलब किसी की कल्पना में नहीं थे, वो सब लोग कांप रहे थे कि ये कौन है, लेकिन जो भक्त था प्रहलाद उसको पता था ये तो मेरे भगवान है, मैं नहीं करता उनसे, वो बोल रहे कि आपके इस अकराल विकराल रूप से मुझे भय नहीं है, आई डोंट फील, मुझे कोई भय नहीं है, सब लोग कांप रहे हैं, मुझे कोई भय उसके अंदर, मुझे भय है तो एक ही बात से है, वैष्णव अपराध से, आपके भक्तों के अपराध से पता था, उससे मुझे जरूर भय है, आपके इस विश्व को डराने वाले सबका हृदय में थर्रार पैदा करने वाले भयंकर रूप से मुझे डर नहीं है, ये भी श्रद्धा का ही परिणाम है, श्रद्धा है तो निर्भय हो जाता है मनुष्य। और कोई प्रश्न है तो पूछ लीजिए, और एक छोटा सा उत्तर देंगे उसके लिए। है कोई प्रश्न बोलो, अधिक मास का महीना है, चाहे सुबह भगवत कथा किसी भी रूप में श्रवण करना चाहिए, अनंत लाभ है, एक एक चीज करने का लाखों लाखों गुना लाभ मिलता है, हृदय से और तन मन धन से अधिक मास के व्रत को करने में लगना चाहिए। यत्र गायन्ति मद्भक्ता तत्र तिष्ठामि नारद, जहां पर भक्त लोग बैठकर मेरे बारे में बोलते हैं, मेरे बारे में सुनते हैं, मेरे धाम का गुणगान करते हैं, वही मैं निवास करता हूँ, मुझे वैकुंठ में रहने में रुचि नहीं है, मैं योग योग रहने हृदय में जाके छुपता नहीं हूँ, मैं वही प्रकट होता हूँ जहाँ पर मेरे भक्त मेरे बारे में बोलते हैं, और भक्त बोलते हैं जहाँ पर आप रहते हैं वही हम रहते हैं, नारद मुनि व्यासदेव जी सुखदेव जी अगस्त्य मुनि भरद्वाज जी जितने संत लोग हैं वो सब हनुमान जी सब प्रकट हो जाते हैं जहाँ भगवान की कथा हो रही है, जहाँ भगवान की कथा हो रही है सारे जितने भी दुर्गुण हैं जितने भी पाप हैं सारे भी जितने भी बांधने वाली चीजें हैं सब नष्ट हो जाती, सारी नदियां तीर्थ पहाड़ अठारह पुराण वेद पर्वत संत लोग सब वहां प्रकट हो जाते हैं जहां कथा होती है, दुर्भाग्य का जगह पर भाग्य उदय होता है जहां पर भगवान की कथा होती है, दुर्भाग्य अवस्था सद्भाग्य में रूपांतरित हो जाती है जहां भगवान की कथा होती है, भवदीय वार्ता कहते हैं भगवान की कथा वार्ताओं का चर्चा होती है, सब अशुभ नष्ट हो जाता है, जीव के कल्याण के लिए जो भी आवश्यक है वो प्रकट हो जाता है, इसलिए संकट से मत डरो, संकट तो आएंगे ही, निश्चित समझो जब तक आप हो दुनिया में संकट तो आएंगे ही, इससे बचने का कोई काम नहीं है। तो भगवान का हाथ पकड़ो तो चलते रहो, भगवान सारे संकटों से पार कर देंगे आपको। कितना भी संकट आए तो जप करना मत छोड़ो, कितना भी संकट आए भागवत का सहारा मत छोड़ो, भगवान के भक्तों का संग मत छोड़ो, साधना को मत छोड़ो, और तीव्र करो और दृढ़ता से करो उसको, जितना भी और समस्या आएगा तो और तेज से करो, और बीमारी आएगा तो और दबा लो, लेकिन हार मत जाओ कि भी क्या करें दवाई से हार गई, नहीं छोड़ो मत उसको, करते रहो श्रद्धा से करते रहो। तो भगवान को ऐसे भगवान को भगवान मजबूर हो जाते ना तो भगवान को भी दिखाओ कि हम आपके शरण में हैं, आप बचाओ नहीं बचाएंगे। हरे कृष्णा
कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।